स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
समसागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री भक्ति सागर जी महाराज की मुनि संघ की।
हम सभी लोगों ने कल से पूजा की प्रक्रिया किन भावों से की जाए और कैसे की जाए इस पर विचार करना शुरू किया है। श्रावक के जीवन में दान और पूजा दो ही ऐसी चीजें हैं जो उसके आत्मानुभूति में या कि आत्मशोधन में उपयोगी है, और पूजा में भी उसके छह अंग हैं। उसमें से पांच तो पूजन रूप ही हैं, एक स्नपन अंग है। स्नपन के मायने होता है अभिषेक। तो इस तरह देखा जाए तो पूजा और अभिषेक ये श्रावक के जीवन में आत्मशोधन के दो बहुत बड़े प्रयोग हैं, या कि भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए भी ये कारण है। नहीं तो सारा दिन हम अपने पांचों इंद्री मन और शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर देखा जाए तो हम उन्हीं की पूर्ति में लगे रहते हैं, पर कुछ समय के लिए मैं शरीर से अलग कोई आत्म तत्व हूं इस बात की अनुभूति करने के लिए या इस बात का विचार करने के लिए हमें अवसर मिलता है, पूजा के क्षणों में भी और अभिषेक के क्षणों में। ये दोनों एक तरह के जैसे कि साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं, तो ठीक इसी तरह ये भी श्रावक के जीवन में एक प्रैक्टिकल है, एक प्रयोग है, भगवान के अत्यंत निकट आने का प्रयोग है। पूजा और अभिषेक की दोनों प्रक्रियाएं, अगर पूजा में अभिषेक शामिल ना हो तो भगवान से दूरी फिर भी बनी रह सकती है, लेकिन अभिषेक तो भगवान के अत्यंत निकट आने की प्रक्रिया है। उनको स्पर्श करने, उनको छू करके और अपने स्वयं के भीतर वैसे ही बनने की अनुभूति करने की प्रक्रिया है। कल अपन ने यह समझा था कि पूजा के मायने हैं निर्मल होना, पवित्र होना, शुद्ध होना। पूजा के मायने हैं अपने को बाहर भीतर से मांजना, धोना, पहुंचना, और पूजा के मायने फटकना, जो सारभूत है उसको अपने पास रख लेना और जो निस्सार है उसे छोड़ देना, या कि जब हम सार भूत को अपने पास रखने लगते हैं तो निस्सार अपने आप हमसे छूटता चला जाता है। हम पूजा के दौरान यही करते हैं। हम आज सोचते हैं कि इस पूजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले आज अपन स्नपन जो कि पूजा का पहला अंग है, अभिषेक, महन भी जिसको शब्द आता है, उस पर थोड़ा सा विचार कर लें कि ये अभिषेक की प्रक्रिया क्या है और कैसी होनी चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको अभिषेक करने का अवसर मिलता है। ये मान के चलिएगा कि दक्षिण भारत में भर छोड़ दें तो उत्तर भारत में तो माँ लोग अभिषेक नहीं करती हैं, दक्षिण भारत में करती हैं। तो आप देखिएगा कि मेजॉरिटी तो माँ लोगों की ही है, 1/3 क्या कहें उसको, 1:3 का रेशियो है। भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में भी 1,00,000 श्रावक थे और 3,00,000 श्राविकाएं थी। तो देखा जाए तो बहुत थोड़े से लोग अभिषेक का अवसर पाते हैं और उसमें भी जिनको अभिषेक का अवसर मिल सकता है उसमें भी आलस करके अभिषेक नहीं करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर अपन देखें तो कई लोग इसी सभा में अगर हाथ उठाएं तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनने एक भी बार अभिषेक नहीं करा होगा, ऐसे भी मिल जाएंगे, एक भी बार भगवान को नहीं छुआ होगा। तो इसके मायने ये है कि अभिषेक की प्रक्रिया बहुत दुर्लभ तो है ही, उसके लाभ न मालूम होने की वजह से उस दुर्लभता से हम लाभान्वित नहीं हो पाते। दुर्लभ हो यह तो ठीक है, लेकिन दुर्लभ होने के बाद भी अगर मुझे कभी अवसर मिल जाए तो मैं उसका लाभ ले लूं, इस तरह की ललक हमारे भीतर नहीं पैदा होती, क्योंकि हमें उसका उसका क्या लाभ होने वाला ये नहीं मालूम। साइंस के हिसाब से अपन थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा भावनात्मक रूप से भी समझेंगे। प्रक्रिया तो है ही, सबको मालूम है अभिषेक की प्रक्रिया, लेकिन उसके भीतर भावनाएं क्या हैं और उसके पीछे साइंस क्या है, भावनाओं के बारे में समझें तो क्या लिखा हुआ है, तुम तो सहज पवित्र नहीं यही निश्चय भयो। भगवान आप पवित्र हो ये मेरे भीतर एकदम निश्चय है, लेकिन तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन ठयो। मंजन भी कहलाता है, अभिषेक कहो, मंजन कहो, स्नान कहो, महन कहो, जो भी कहना। भावनात्मक रूप से क्या कह रहे हैं भगवान के सामने, अभिषेक कर रहे हैं और क्या भावना भा रहे हैं कि आप तो हमेशा से पवित्र ही हो, आपकी पवित्रता के लिए मैंने ये स्नान की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। मैं मलिन राग आदि मलते वर रहो, मैं राग द्वेष के मल से मलिन हो रहा हूं, महामलिन तन में बस विधि बस दुख सहो। और इस मलिन शरीर में रहकर के मैंने बहुत दुख सहे हैं और अब क्या कर रहा हूं, पापा चरण तज नमन करता चित्त में ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरहंत का मानो नहन परसन करूं, स्नपन भी करूं और उनका स्पर्श भी करूं मानो साक्षात भगवान मिल गए हैं। और पापा चरण तज, मैं समस्त पाप आचरण को छोड़ करके और आपके अभिषेक के लिए आया हूं, ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। एक चीज और समझ लें कि ये जो भगवान का अपन अभिषेक करते हैं सो वो जन्माभिषेक नहीं करते हैं, लेकिन परंपरा चली है तो अभी भी उसमें अपन कोई माने ज्ञान पूर्वक नहीं करते। मुश्किल ये है, मैं कई बार देखता हूं कि क्रियाएं अपन दोहराते हैं पर कई क्रियाएं बहुत अज्ञान पूर्वक भी दोहरा लेते हैं। अब बदन उदर अवगाह कलश दस धरें, इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे और आखिरी में पढ़ेंगे कि सुरपति ले अपने शीश जगत के गए जिन राजा, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये जन्माभिषेक थोड़ी कर रहे हैं अपन, लेकिन परंपरा चल रही है, ध्यान ही नहीं रहता और उसको दोहराते चले जाते हैं। मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं कि भगवान का अभिषेक करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना वो तो नहीं, और सुरपति ले अपने शीश बिजब गए थे सु गए थे, आप थोड़ी है बचू, वो तो जन्माभिषेक हो चुका। हाँ आप जरा पढ़िएगा आचार सार पढ़िए, उसमें लिखा है कि हम जन्माभिषेक नहीं कर रहे, भगवान के चार अभिषेक होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो सुमेरु पर ले जाके भगवान का जन्माभिषेक होता, जब भगवान राज्य अवस्था में पहुंचते हैं तब राज्य गद्दी पर बैठने से पहले राज्याभिषेक होता, वो भी हो चुका भगवान का, जब दीक्षा लेते हैं तब उनका दीक्षा से पहले अभिषेक करते हैं इंद्र आकर के, वो दीक्षा अभिषेक हो चुका है, ये कौन सा अभिषेक है, चतुर्थ अभिषेक है ये। जिन बिंब पर साक्षात जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक तो कर ही नहीं सकते, जैसे मुनि महाराज का साक्षात अभिषेक नहीं हो सकता, ऐसे ही साक्षात अनंत भगवान का अभिषेक नहीं होता, लेकिन अनंत भगवान के प्रतिबिंब का, उनके जिन बिंब के ऊपर जल की धारा छोड़ना, ये चतुर्थ अभिषेक है। वृषभादि महावीर पर्यंतेभ्यो जलम अभिषिंचयामी, वृषभनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर भगवान के बिंब पर मैं जल की धारा छोड़ता हूं, ये उसका मंत्र है। ओम ब्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो जलम अभिषिंचयामी, निरंतर धारा छोड़ते हुए इसका पाठ किया जाता है, लेकिन उसकी जगह पर और अपन और दूसरी दूसरी चीजें, क्योंकि अपन को खुद ही भ्रम है। पर कई लोग ये भी कह देते हैं कि अरे ये तो अभिषेक आवश्यक ही नहीं है, वो तो अभिषेक इसलिए किया जाता क्योंकि मूर्ति खराब मैली हो गई तो उसको साफ करने के लिए। नहीं भैया, मूर्ति की सफाई करने के लिए अभिषेक नहीं किया जाता, अपने मन की मलिनता दूर करने के लिए अभिषेक किया जाता है। नंदीश्वर दीप में वहां कौन सी धूल जम रही है, रत्नों की प्रतिमाएं हैं, वहां क्या आवश्यकता है अकृत्रिम जिनालयों में। सौधर्म इंद्र जाकर के हम और आपके तो सम्यक दर्शन का पतियारी नहीं है, वो तो छायक सम्यक दृष्टि है। इंद्र सौधर्म वो जाकर के वहां अभिषेक की प्रक्रिया करता है, तो अभिषेक की प्रकृतियां आगम अनुकूल भी है, भावों के अनुकूल भी है, उसमें हमारी भावनाएं भी पवित्र होती हैं। और ये मान के करना चाहिए कि ये जिन बिंब पर किया जाने वाला चतुर्थ अभिषेक है, तीन अभिषेक तो भगवान के हो चुके हैं। अभिषेक की प्रक्रिया को ठीक ढंग से किया जाए, भगवान का अभिषेक सदा सिंहासन पर विराजमान करके ही किया जाए, लेकिन आजकल कोई सिंहासन पर नहीं, थाली में दल लेते हुए में भगवान डूब जाते हैं। विचार करो अपन कि किस तरह से प्रक्रिया करते हैं। अभी अभी मैं प्रश्नोत्तरी मैं देख रहा था कि मैं ठीक समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, ठीक है वो उनने पंडित जी ने भी बड़े भारी प्रतिष्ठाचारी माघनंदी आचार्य हुए हैं सबसे बड़े, उनका है 10वीं शताब्दी का अभिषेक पाठ, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके फिर जलधारा छोड़ते हैं, सिंहासन के नीचे पानी रह जाएगा, भगवान को तो स्पर्श ही नहीं करेगा, और अगर उसी थाली में धर के करेंगे तो भगवान उसी में थोड़ी देर के बाद तो नीचे नीचे तो डूब ही जाएंगे। ऐसी कई चीजें हैं जो कि अपने जीवन में अपन और कर रहे हैं, पर उनके बारे में अपन को विवेक नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि जब तक भगवान को सिंहासन पर पुनः विराजमान न कर दिया जाए अपने स्थान पर, तब तो गंदोदक नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई इस चीज को फॉलो नहीं करता। कई चीजें इन पे अपन विचार बाद में करेंगे, ये तो क्रियाएं हैं, पर अपन ये देख लें कि इसके पीछे कोई साइंस है और उसके पीछे कोई भावनाओं की निर्मलता भी है कि नहीं। तो अपने हाथ तो किसी ने इस तरह की प्रक्रिया नहीं की, पराशक्ति मनोविज्ञान पैरासाइकोलॉजी वाली बहनों ने एक इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में, वहां पर इस पर प्रयोग किया, सन 1973 की बात है, और उन्होंने अभिषेक की प्रक्रिया पर प्रयोग किए, और उस प्रयोग के दौरान उन्होंने ये पाया कि अभिषेक हमेशा 90% कंडीशंस में और किसी न किसी धातु की प्रतिमा पर ही किया जाता है। बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें की कोई विशाल प्रतिमा है पाषाण की तो उस पर अभिषेक होता है, पर रोज जो अनुष्ठान होता है वो प्रतिमा तो पाषाण की नहीं होती, वो तो किसी न किसी धातु की होती है। और धातु के साथ ये है कि उसकी अपनी कोई एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, रेजिस्टेंस होती है, और कंडेंसिटी होती है, उसकी अपनी चालकता होती है। ये दोनों चीजें हैं। रेजिस्टेंस घटती है, कंडेंसिटी बढ़ती है। और अभिषेक के दौरान यही होता है, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि किसी भी चीज से, जल से भी अभिषेक किया जा रहा है तो जल से अभिषेक करने के बाद रेजिस्टेंस कम हो गई और कंडेंसिटी बढ़ गई, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, विद्युत प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इन दोनों प्रक्रियाओं के होने से नेगेटिव आयंस निकलना शुरू हो जाते, आयनाइजेशन की प्रक्रिया होती और रिनाइन, साइंस की भाषा में ये करते क्या है रिनाइन, अगर उस वातावरण में रिनाइन कम हो जाए तो मरण भी हो सकता है अपना, ध्यान रखिए। सबसे अधिक रिनाइन होते हैं किसी समुद्र के किनारे या कि पर्वत पर, और आप देखना कि तीर्थ स्थान दोनों जगह बनते हैं। चुना ऐसा स्थान गया है जहां की जो पोल्यूशन है, जहां की प्रदूषित हो गया है वातावरण, वहां नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि वहां नेगेटिव आयंस की कमी हो जाती है। ऐसी जगह जहां की वातावरण पवित्र रहता है, नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं, वहां पहुंचने वाला अपने आप स्वस्थ हो जाता है। इस तरह की अभिषेक करने की प्रक्रिया हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने की तो है ही, वो तो ही बताऊंगा मैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने की, क्योंकि नेगेटिव आयंस हमारे हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, उसमें मिक्सअप होकर के और ऑक्सीजन के साथ और पूरे के पूरे शरीर में, रक्त में जाते हैं। हमारे इस प्रक्रिया को ठीक करने में नेगेटिव आयंस का बहुत रोल है। ये उन्होंने रिजल्ट निकाला और वो वहां, और उतना ही नहीं, वो कहते हैं कि ये अगर ट्यूबलाइट और या कि कोई और दूसरी लाइट में अभिषेक किया जाएगा तो नेगेटिव आयन बहुत कम बनेंगे, या कि बनेंगे भी तो खत्म हो जाएंगे, दीपक की रोशनी में बहुत अधिक मात्रा बनेंगे। खुली जगह में करने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, बंद जगह में करने से, इसलिए गर्भगृह गर्भालय बना दिया छोटा सा, उसके भीतर ही सारी प्रक्रिया होगी, चार लोग भीतर जाकर के उसका अभिषेक करेंगे, बाकी लोग बाहर से देखो आपके पास कैसे आएंगे रणायन, तो उठाओ छत्र वो चमर, और वो चमर ढोने वाले चमर ढो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभिषेक की प्रक्रिया के द्वारा जो चमर ढोरे जाते हैं उससे वो नेगेटिव आयंस बाहर खड़े लोगों पे फेंकते हैं। बताओ आप, हमने धार्मिक क्रियाएं भी ऐसी रखी कि उनके पीछे साइंस था, अपन को तो लग रहा है चमर ऐसे ढूंढ रहे हैं क्या हो रहा, लेकिन वे चमर ढूंढते हैं और नेगेटिव आयंस को गर्भगृह से लेकर के बाहर के लोगों को लाभान्वित करते हैं। इसके बाद भी जो पीछे खड़े हैं उन तक नहीं पहुंच पाए तो कहते कि ये जो गंदों तक है वो नेगेटिव आयंस युक्त है, एच प्लस ओ एच माइनस एच टू ओ से वो आयोनाइज हो गया, उस चार्ज वाटर है और आप तक पहुंचेगा, आप भीतर नहीं पहुंच पाए, आपको वो नेगेटिव आयंस यहां नहीं मिल पाए, दूर खड़े थे, कोई बात नहीं, अभी आ रहा है जल, तुरंत के तुरंत माथे पर लगाओ, उतना ही लाभ होगा जितना कि अभिषेक करने वाले ने भीतर लाभ ले लिया। बताइए, इस तरह की इतनी व्यवस्थित प्रक्रिया ये रही, फिर धीरे धीरे करके प्रक्रियाएं तो रह जाती हैं और उसके पीछे का जो साइंस है वो गड़बड़ा जाता है या खो जाता है, तो उसके लाभ नहीं देखने में आते, तो फिर उसके प्रति जो रुचि है वो भी जागृत नहीं हो पाती। अपन को प्रक्रिया ठीक ठीक करके उससे लाभ लेना चाहिए, कोई लाभ ले या ना ले, अपन तो आगे बढ़ करके और इस प्रक्रिया को ठीक करके लाभ ले लें। प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं समझना कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, अकेले भाव महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप जरा सा हलवा बनाने गए थे और चूक गए अगर तो मीठी ले ही बन है, चिपका भी कामा है खा भी नहीं आ रहा, सामान्यत ये सब में शक्कर भर का है, ले बन जाए, प्रक्रिया का सारा हिसाब किताब। तो अपन लोग जो है अभिषेक करते हैं और उसकी प्रक्रिया ठीक नहीं करते, उसका लाभ नहीं मिलता, तो अपनी रुचि भी नहीं होती। या जो लोग कर रहे हैं वो परंपरा से कर रहे हैं, नए लोगों को उससे कोई आनंद नहीं उत्पन्न होता। और दूसरी चीज बहुत भावनात्मक, हमने तो अभिषेक करते समय कषाय करते देखा लोगों को, हाँ रोज देखता हूं, थोड़े कोई आगे आ गया और दूसरे ने कहा कि तनक बाजू सो जा, हाँ ठहरे आओ रहने दो, तुम अपनी अपनी बात धरो, तुम अपनी बात हमें नहीं बताओ, उतनी ऐसी झुंझलाहट ऐसी आ जाएगी तो हम देखते। अब जो देखने वाला है उसके ऊपर क्या असर, हम भी देखते तो हमारे ऊपर भी क्या असर पड़ता। अपने चुपचाप सही मित्र रहो, अपने परिणाम न बिगाड़ो, सामने वाले ने तो बिगाड़ ही ले। फौरन ये मैं असर बता रहा हूं, क्यों नहीं अपन को इन पूजा करने वाले उस समय तो इतना परिणाम उसके गदगद होना चाहिए, अभिषेक करने वाले के इतने गदगद होना चाहिए कि कहीं कोई उसके मन में किसी के प्रति कोई दुराव, कोई मन में कषाय का भाव ही नहीं है, आने ही नहीं चाहिए। इतने परिणाम निर्मल हो गए कि कोई उस उठा के उसको धक्का दे के बाहर भी फेंक दे तब भी वो हंसता ही रहा कि अरे वाह मंदिर में है हम। ऐसा ऐसा भावनात्मक मुझे पहली बार अपने अभिषेक का अनुभव है, वो आपको अनुभव बताऊं कि अभिषेक की प्रक्रिया बहुत भावनात्मक है। मुझे लगता है साइंटिफिक तो है ही, बहुत भावनात्मक भी है। साइंस उसके पीछे तो हमने आपको बता ही दिया। मैंने जब पहली बार अभिषेक, और वो मुझे मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत भय लगता था, पूजन करने मंदिर में मैं जाता था तो थोड़ा जल्दी, मुझे कॉलेज के वजह से जल्दी जाना था। अब हमारे जो पुजारी जी थे वो शुरू की वेदी से करते थे अभिषेक, माने प्रक्षाल, जब तक वेदी की प्रक्षाल ना हो जाए तब तक तो पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, आगम का वचन है। तो हम आखिरी वेदी पर नेमिनाथ भगवान की और पूजा करनी है, और वो जब तक आएंगे तब तक तो हमारी आदि हो जाएगी, अब क्या करें। तो हमने उनसे कहा कि जल्दी हमारी पहले आखिरी वेदी पे कर दो आप, हम पूजा शुरू कर दो, फिर तुम कर पर रही हो अपना अभिषेक। तो उनने पहली बार हमसे कहा, कह रहे भैया थोड़ी हमारी मदद भी हो जाए, आप जल्दी भी आ जाते हो, आप भी करण लगो, सोते से आप करो और हम इतने से करें, सो जल्दी हो जाए, सबको आनंद रहेगा। अरे हमने कहा हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा अभिषेक, कैसे करेंगे हम। कहते अभिषेक नहीं, प्रक्षाल ही करो आप। और उन्होंने जो है पुजारी जी ने मन बनवा करके, मुझे जल्दी भी जाना था, सो हमने कहा चलो अपन सीख लो, सो पराश्रित काय करो, अपने करो और आगे बढ़ो। ऐसा सोच करके सही मन की जो बात थी, कोई उतना उत्साह नहीं था उस समय अभिषेक का, क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं कि क्या उससे लाभ है। तो तीन सीढ़ी चढ़कर भगवान के पास पहुंचते थे, लगभग 5 फीट की प्रतिमा जी थी, 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर अब चढ़ रहे हैं। उनने 2 कपड़े दे दिए, एक सूखा एक गीला, सूखे से पहले पहुंच लेना, फिर गीले से पहुंच के, फिर सूखे से पहुंच के 9 बार 27 बार नमोकार पढ़ लेना, बस इतना ही। हमने कहा ठीक कर लेंगे, इतना तो आराम से कर लेंगे अपन। लेकिन जब ऊपर चढ़े तो ऐसे पैर कप रहे थे, अभी भी याद आ जाता है कि पहली बार जब अभिषेक किया था, मन में ऐसा रोमांच हो गया, गदगद हो गया था कि भगवान के निकट पहुंच रहा हूं, एकदम पास पहुंचूंगा। और 3 सीढ़ी चढ़ के पैर कप रहे हैं, और फिर उसके बाद अभिषेक कर दिया, पसीने पसीने हो गए, अभिषेक के दौरान कोई गलती ना हो जाए। और फिर बाद में पूजा करते समय विचार आ रहा है कि ऐसी क्या भयभीत होने की बात थी, ऐसे घबराने की क्या बात थी, भगवान का ही तो अभिषेक कर रहे थे। और फिर विचार आया कि देखो अभिषेक करते समय कैसे परिणाम थे, कितनी कर्मों की निर्जरा हुई होगी वो तो आज कह रहे हैं, पर परिणाम कैसे थे। जब हमने भगवान की आंख पहुंची थी तो दूसरे ढंग से पहुंची थी, वो पैर तो रगड़ के पहुंचे थे पर आंख तो ऐसे धीरे से पूरा चेहरा पहुंचा था, ये मान करके कि भगवान है, चोट ना पहुंच जाए। इतना इतना मूर्ति के साथ ऐक्य हो जाता है कि मूर्ति प्रेम क्षणों में पाषाण की नहीं रह जाती, साक्षात भगवान की हो जाती है। ये अभिषेक के क्षण है, ये भावना के क्षण है। फिर तो कोई भी मूर्ति को ऐसी थोड़ी उठाएगा, फिर तो ये मान करके कि भगवान को लेकर के आ रहा मैं विराजमान कर रहा हूं, भगवान है, मैंने छूने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अरे बालक भगवान को छू करके सची तो एक भवावतारी हो जाती है। हम भगवान के जिन बिंब को हाथ में लेकर के क्या अपने अनंत भवों को काट करके दो तीन भव नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं अगर हमारे परमात्मा में उतनी श्रद्धा है, हमारी भावना उतनी अगर निर्मल हो जाए, उस सची की उस पर्याय होने के बाद भी, स्त्री पर्याय के बाद भी सिर्फ एक भाव शेष रह जाता। बालक भगवान का स्पर्श किया है, मां के पास से उठा के इंद्र महाराज को बाहर प्रसूति गृह से बाहर दे दिया, इतने से मैं और अपन इस प्रक्रिया का लाभ नहीं लेते जो अपने को सहज सुलभ है। करेंगे कई लोग, हाँ ऐसे जाकर भगवान के पांव पड़क, सब प्रतिमाओं को ऐसे ऐसे हाथ लगे, सबको ऐसे हाथ लगा के फिर पांव पड़े। ये है ही नहीं, कहां लिखा हुआ है? लेकिन जो नहीं लिखा वो तो करेंगे, जो लिखा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है कि कैसे जाके मैं 27 बार नमोकार करूं, भगवान को लाऊं, पूरी प्रक्रिया से विराजमान करूं और खड़े हो जाऊं जल धारा करके उनके प्रक्षाल का और सौभाग्य प्राप्त करूं, जो प्रक्रिया है। और गदगद हो करके एज ए रूटीन नहीं, अपन लोगों को भी कई चीजें एज ए रूटीन होती है। अभिषेक बड़ा एज ए रूटीन है, वो तो रोज होता है, जैसे अपन नहाते हैं वैसे नहा ली भगवान ने, पर ऐसा नहीं है। पावन भई पर्याय मेरी, मैं भयो पूरण धनी, ऐसा मन में भाव आता है क्या कि मेरी पर्याय पवित्र हो गई, मैं आज बहुत पूर्ण धनवान हो गया हूं? ऐसा भाव ही नहीं आता है। नहीं, भगवान के अभिषेक करे समय गरीबी दूर हो जाती तो अच्छो रहे। तो अरे अभिषेक करने से ही दूर हो गई, जिनको अभिषेक नहीं मिला वो हैं गरीब वास्तव में, जिनने अभिषेक किया वे तो बहुत धनवान हो गए, और पैसा मिले चाहे नहीं मिले, वो जो धन्यता है वही तो धनवान बनाती है, हमारी पर्याय धन्य हो गई है। ऐसा हमारे मन में अभिषेक के दौरान विचार आना चाहिए। इतना हम इन प्रक्रियाओं के साथ अगर जुड़ जावे तो ये प्रक्रियाएं भी हमें और बहुत लाभ दे सकती हैं। भैया अभिषेक की प्रक्रिया को अपन व्यवस्थित कर ले, कहीं कोई उसमें टूट फूट कमी हो रही हो तो उसे सुधार ले। कभी अभिषेक ना किया हो तो मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करके एक आध बार करके देखना, और अगर फिर नहीं मन लगे तो मत करना, पर जिंदगी में एक आध बार भगवान के छूने का, और वो भी ऐसे ही जाके छूने का नहीं, पूरी प्रक्रिया से। और कभी मन बने तो मैं तो पूजा करने वालों से कहता हूं कि कभी मन बने तो नहा धो करके बढ़िया से खुद पानी खींच करके उसको पास करके और फिर अपने हाथ से द्रव धो के महीना में एक आध दिन तो ऐसा करो। लगी लगाई पूजा नहीं करेंगे हम, जो लगी लगाई द्रव गरीबा में करेंगे हम, तो जो है सुबह से जाएंगे और बढ़िया और अभिषेक करेंगे हाथ बाट से और फिर पूजा करेंगे चित्त से। ऐसी एक दिन तो करो, साल में एक दिन का नियम ले लो, चलो ऐसी वाली एक दिन करेंगे, साल में एक दिन करेंगे, महीने में एक दिन नहीं कर पाएंगे। इन चीजों से अपने जीवन में बिना उसके आप कितने भी ध्यान कर लो, कितने ही स्वाध्याय कर लो, मैं ये कह रहा हूं वर्षों आप स्वाध्याय कर लो, उतनी कर्मों की निगरानी होगी जितनी कि एक बार भगवान के अभिषेक करने मात्र से। अभिषेक की प्रक्रिया इतनी अधिक हमारे परिणामों को, अगर हमारे भावनात्मकता है तो, ये पहले कह दे रहा हूं, अगर श्रद्धा है तो, और श्रद्धा भी कैसी, जैसे हमने कई बार आपको वर्णी जी का उदाहरण दिया कि शिखर जी की वंदना में अगर पानी की प्यास लगाई है और पानी नहीं मिल रहा तो भगवान से कह रहे कि समाओ कछु नहीं है, हम तो प्राण छोड़ रहे हैं, अच्छे परिणामों से स्वर्ग गए हैं, भजी थी आपकी वो गए कि हम मर गए, कोई नहीं है फिर दर्शनों को ऐसी कह रहे। उनकी श्रद्धा देखो आप, वो कहें कि अगर शिखर जी के पहाड़ को प्राण निकल गए तो हम तो अच्छे परिणामों से स्वर्ग चले गए, मैंने क्षेत्र बदनाम हो गए महाराजा, हम नहीं जाना। भगवान से ऐसी कह रहे हो कि मदद करो पानी आने की कछु व्यवस्था, इतनी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा अपने भीतर भी आ जावे कि भगवान मैं आपके अभिषेक पूजन करके और आज तक पवित्र नहीं हो पाया, मेरा मन हमेशा कलुषित रहता है, मुझे कषायें घेर लेती, भगवान कुछ तो ऐसा करो, मैं आपकी पूजा और अभिषेक करता हूं और मुझे गुस्सा आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये पूजा अभिषेक करने वाला गुस्सा करता है, मैं अब आपको अभिषेक पूजा कर रहा हूं, आप इतनी मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे ये कषायें न घेरे, ये कषायें मुझे घेर लेती हैं, ऐसा तो कहो किसी दिन भगवान के सामने जाके कि ये पाप मुझे न घेरे, भगवान आपकी पूजा अभिषेक करता हूं। ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर अगर पैदा हो जाए कि आज मैंने अभिषेक किया है, आज तो मुझे कषाय मंद ही रहेगी, मेरी कषाय तीव्र नहीं होगी क्योंकि मैंने पूजा करी है, मैंने अभिषेक करा, मुझे भेद विज्ञान हो गया है, मैं अपने शरीर और आत्मा को अलग मानने लगा हूं, मुझे अपने आत्मा के अनंत वैभव का दर्शन हो गया भगवान के अभिषेक और स्पर्श करने, ऐसा हमारे भीतर अगर भाव आ जावे तो जरूर से ये प्रक्रियाएं हमारे जीवन को, ये तो प्रयोग है, हमने तो आपको थ्योरी बता दी, अब आप प्रयोग करके देखिएगा। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि धर्म में कोई प्रयोग नहीं है, साइंस में तो प्रयोग है, हम कहते हैं प्रयोग है। आप किसी गरीब आदमी को दान देके तो आइएगा, फिर देखिएगा मन कैसा गदगद होता है। आने वाली है दीपावली, लोग मनाते हैं अपने घर में, रोशनी करते हैं, अरे किसी गरीब आदमी को जिसको कि दीप भरने के लिए तेल नहीं है, जिसको बाती के लिए पैसे नहीं है दीपक खरीदने के लिए, उसके उसके पास जाकर के और एक दीप तो दे के आओ अपने हाथ से और उसमें जला के लाओ कि ये है रोशनी, मैं देखता हूं आने वाली दीपावली कौन कैसे मनाता है, ये इस तरह मनाओ। दान और पूजा दो ही चीजें हैं जो श्रावक के जीवन को और पवित्र कर सकती हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं से अपन लाभ लें इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।